a Jean-Louis, dove già andrà. स्मृति दिवसो क्या कहा जाता है समर्थि दिवस यादगार दिवस अव्यक्त दिवस विश्व शांति दिवस वर्ल्ड पीस डे ब्रह्मा वाक का साकार से आकारी स्वरूप धारण करने का दिवस साकारी ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा बनने का दिवस प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण बनने का दिवस प्रजापिता ब्रह्मा का संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का दिवस। तो आज मधुबन में कैसा वातावरण है? अव्यक्त। सभी आत्माएं की स्थिति में है अव्यक्त। अव्यक्त बोल, अव्यक्त दृष्टि, अव्यक्त चलन, अव्यक्त भावनाएं, अव्यक्त स्मृति आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है। आज देश विदेश के सभी बच्चों के याद के संदेश वतन में वायुमंडल के रीति से फैले हुए हैं। बच्चों के प्रेम के आंसू, बच्चों के प्रेम के आंसू मालाओं के रीति से वतन को सजा रहे हैं। दिल के दिलरुबा के दिल के दिलरुबा की आवाज बाप दादा तक पहुंच रही है। आशाओं के दीपक जगे हुए हैं और वतन को जगमगा रहे हैं। बच्चों के मन से निकले हुए बाप के महिमा के गीत, बाप के महिमा के आलाप साजों के रीति से वतन में गूंज रहे। ये सुंदर भाषा है बाबा की, 79 की मुरली है ये जो आज चली। तो आज बाबा ने कहा अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता, अव्यक्त वतन वासी बन जाओ, अपने को सदा के लिए अव्यक्त वतन वासी बनाओ। जो बाप की पसंदी वो मेरी पसंदी, बाप के अंत के जो तीन बोल है कौन से बोल? साकारी आकारी और निराकारी। साकारी आकारी निराकारी नहीं,
निराकारी
निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये उसके ये तीन बोल है। ये उपहार है भगवान का, इसकी उसे भेंट दे। तो आज के दिन बाबा भी आएंगे तो अपनी स्थिति को अव्यक्त रखना, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना। अव्यक्त अर्थात व्यक्त में ना आना, अव्यक्त अर्थात वाणी से परे, अव्यक्त अर्थात बोल से परे, थोड़ा सा वाणी से भी क्या चाहिए? वैराग। जब तक वाणी से थोड़ा वैराग ना आ जाए अव्यक्त स्थिति नहीं बन सकती। तो आज की उंगली पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 6। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होती है जब मेरापन, जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना, सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। ना अपनी देह है ना देह के संबंध ही है, ना तो देह हमारी है और ना ही देह के संबंध, तो बेफिक्र हो गए। सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया, बेफिक्र बनने के कारण फिक्र खत्म हुआ और फकूर यानी नशा आ गया। क्या होगा, कैसा होगा, कल क्या होगा, परसों कैसे होगा, यह फिक्र रहता है जब हालतें खराब होती है। फिक्र रखने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह नहीं कर सकते। तो बाबा फिक्र के लिए बैठे, फिक्र अर्थात चिंता। जिसको फिक्र होता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती, निर्णय गलत हो जाता है, निर्णय ठीक न होने के कारण और ही मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी, निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो आज कोई लखपति होता है और कल ककपति बन जाता है, करोड़पति रोडपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती, हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी, कब? जब बुद्धि खाली होगी, क्लियर होगी, स्वच्छ होगी, पवित्रता होगी, शुद्ध होगी, व्यर्थ उसमें ना होगा, किचड़ा उसमें ना होगा, प्योर होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है, इसलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो, मन पर कोई बोझ नहीं, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पश्चाताप नहीं किसी बात का, कोई अंतर्द्वंद नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई दुख नहीं अंदर, ऐसी एक निश्चिंत अवस्था। तो ऐसे फ्री हो या कोई किचड़ा है बाबा को, टोकरी वाले, बोझ वाले, गठरी वाले पसंद नहीं, कौन पसंद है? ताज वाले, विश्व कल्याण का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, विश्व सेवा का ताज पहनने वाले से पसंद है। योग अग्नि द्वारा जो भी किचड़ था वह चल गया, अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ चलेगा, कुछ रह जाएगा। इसके लिए इस अग्नि को प्रज्वलित करो, अपने अंदर तपस्या की अग्नि को प्रज्वलित करो, अपने अंदर बैठा हुआ जो योगी है उसको जगाओ, अपनी चेतना को जागृत करो। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया, जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। बुद्धि में कोई किसी के प्रति बदले की भावना नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति विकार की दृष्टि नहीं, किसी के प्रति साधारण संकल्प भी नहीं, हरेक को महान आत्मा देखने की का अभ्यास। हरेक देव कुल की महान आत्मा है, रॉयल कुल की महान आत्मा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मा यहाँ एकत्रित हुई है। तो हमारी दृष्टि भी परिवर्तन हो जाए, वृत्ति भी परिवर्तन हो जाए, एक एक संकल्प, एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक भावना शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए। तो जितनी बुद्धि, जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वह सदा बेफिक्र रह सकता है। इसलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है, कहां भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा? तो किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। आज की मुरली में भी बाबा ने तीन बातों को समाप्त करने के लिए कहा है। सबसे पहला दिल शिकस्त होना, उदास हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना, हताश हो जाना, इसको समाप्त करो। दूसरा किसी भी संस्कार या परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, इसको समाप्त करो। और तीसरा वैभव या पदार्थ के आकर्षण, इसको भी समाप्त करो। और तो डैश डैश कहा है, बहुत सारी बातें है, पर बाबा ने कहा इन सबको, ये जैसे कलयुग का पहाड़ है, उंगली दो और इसको समाप्त करो। तो ये सब गंदगी है, तो सदैव चेक करो, क्या चेक करो? स्वच्छता है, हृदय को स्वच्छ करो, भक्ति में भी हृदय को स्वच्छता, हृदय की स्वच्छता का गायन है। सभी धर्मों ने हृदय स्वच्छ होने पर जोर दिया है, स्वच्छ अर्थात जिसमें कोई भी नकारात्मक भाव ना हो, कोई व्यर्थ ना हो, कोई साधारण तक ना हो, विकार तो दूर की बात, मिक्स तो नहीं है ना, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है बाबा कहते। संपूर्ण परिभाषा, पवित्रता की परिभाषा के हिसाब से व्यर्थ भी अपवित्रता है। और व्यर्थ को कैसे समाप्त करेंगे? समर्थ संकल्पों के द्वारा। हमारे पास बहुत सारे समर्थ संकल्पों का स्टॉक चाहिए, उसके सिवा व्यर्थ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह अंधेरा है, उसका अस्तित्व नहीं है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है ही नहीं, तो जहां समर्थ संकल्प है वहां व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। बाबा हमेशा कहते हैं मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ अमृत वेले। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करे। तो जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता है चला जाता है, अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स्ड होता है, हमारी दिनचर्या में एक मिनट भी इधर से उधर ना हो। ऐसी दिनचर्या बनाओ, ऐसी शक्तिशाली दिनचर्या। तो आप कितने बड़े हो, कितने बड़े हो? सबसे बड़े। तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है हरेक को जो करना है, अपनी सेवा अनुसार, अपने कार्य व्यवहार अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट करना। भोजन और नींद ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन दो चीजों को अगर सेट कर दिया तो सब सेट हो जाएगा। कितना नींद कर रहे, कितना समय नींद कर रहे, पूरी नींद होनी चाहिए। नींद और दूसरा है भोजन, ये दो चीज ऐसी है जिनको सेट करना। और आज बाबा कह रहे दिनचर्या, किसी सेवावश यदि दिनचर्या में थोड़ा बदल होता भी है तो भी वहां पर दुखी नहीं हो जाना, तुरंत अपने आप को सेट कर लेना। कल कहा ना, जैसा समय वैसा स्वरूप। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। किसमें बिजी रहना? कोई कहता है मैं तो कंप्यूटर पे लगे हैं सुबह से लेकर रात तक सेवा में, तो हम तो बहुत बिजी है, व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है। इसको बिजी कहेंगे? सुबह से लेकर सेवा है कंप्यूटर पर रात तक, ये बिजी नहीं है। बिजी अर्थात समर्थ संकल्पों में बिजी, श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी, मन को श्रेष्ठ भाव में स्थित करने में बिजी। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने के कारण बेफिक्र होता है, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, और डबल लाइट, हल्कापन। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत सारी सेवाओं का विस्तार है, उसके बाद भी स्थिति हल्की। ऐसे भी नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है अपने आप। तो डबल लाइट होना, दृढ़ता है तो सफल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इस बात में दृढ़ करना है संकल्प को। इस सारे वर्ष में, ये 31 दिसंबर की मुरली है, इस सारे वर्ष में चेक करना कि सारा वर्ष बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो, एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो। तो क्या कहा बाबा ने, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह था, कोई भी फिक्र नहीं, फकूर नशा रहे। और उसके लिए अगर फिक्र है तो निर्णय शक्ति कमजोर हो जाएगी, हाँ की बजाय ना हो जाएगा, ना की बजाय हाँ हो जाएगा, उससे नुकसान हो जाएगा। और बेफिक्र अर्थात मन बुद्धि सदा फ्री, मन बुद्धि पर कोई बोझ नहीं। कोई एक बहन है लखनऊ की, उनका एक ऐसा अनुभव है कि उनको बाबा ने मधुबन में सबको कपड़े देने की सेवा दी थी। क्या नाम है बहन का? नाम भूल गया। लखनऊ के इंचार्ज में हाँ? दादी नहीं है, राधा है शायद कोई। तो उनको बाबा ने कहा था कि जो भी कुछ भी मांगने आए ब्रह्मा बाबा ने उसे दे देना, यहां से कोई असंतुष्ट होकर नहीं जाए आपके पास से। अगर यहां से कोई, यहां जो जिसने अपना जीवन समर्पण कर दिया है वो यहां आकर असंतुष्ट हो गया और उसे अपने मित्र संबंधी याद आए, अपना लौकिक घर याद आया और वो यहां से उसकी बुद्धि हट गई, तो वो बोझ तुम पर रहेगा। तो उसने बाबा से प्रश्न किया कि कभी वो योग कर रहे थे तो कंटिन्यूअस सेवा के संकल्प चल रहे थे, तो उसने पूछा बाबा कि अभी क्या करें, योग कैसे लगा, योग में तो सेवा के संकल्प आ रहे, आपने तो कहा है कि योग में सेवा के संकल्प भी नहीं आने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुमने जिस आत्मा को ना कर दिया था पहले तो जाओ, उसको जो चाहिए वो दे दो, उसके बाद योग करो। जब तक सेवा में हम लापरवाह है या हमने किसी को असंतुष्ट किया, हमारा योग नहीं लग सकता। इसके लिए जो कर्म और योग है वो हमारा एक्यूरेट हो। अगर कर्मों में हम कर्म ऐसा कर रहे हैं जिससे कंटिन्यूस बद्दुआएं मिल रही है आत्माओं की, आत्माएं उदास हो रही है, निराश हो रही है, हर्ट हो रही है, आहत हो रही है, तो हम योग में बैठेंगे तो सेवा के संकल्प चलेंगे, कुछ ना कुछ आते रहेगा उस आत्मा के बारे में। तो उस बहन को बाबा ने कहा पहले तो जाकर उसको दे दो और फिर आओ। मैं नाम भूल गया उस बहन का, लखनऊ की सेंटर इंचार्ज उस समय। तो बाबा कह रहे हैं क्या करो, योग अग्नि से बुद्धि में जो भी किचड़ा है उसको समाप्त करो। आग, आग में कुछ भी डालो तो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो पुराने संस्कारों को जलाना है। और राख को क्या करना है, राख में से भी कभी कभी जिंदा हो सकता है, उसे दूर दूर कहीं ना कहीं डाल देना, सागर में जा जाकर सागर में डुबा देना, नहीं तो पता नहीं। तो राख में से भी जिंदा हो सकते संस्कार। तो योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया।
कौन से पंछी है, फिनिक्स?
फिनिक्स नाम का पंछी है जो अपने की राख से भी उठता है और वापस फिनिक्स बन जाता है। ऐसे विदेश में ग्रीक मैथोलॉजी में पक्षी है, इट्स राइजेस फ्रॉम द एशेस, अपनी राख से जिंदा होता है। तो जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वो सदा बेफिक्र होगा। तो लक्ष्य रखना है हमारी बुद्धि में किसी के अवगुण नहीं रखने। कल का वरदान ऐसे ही कुछ था, दूसरों को, दूसरे के अवगुण को देखने की आंख, नेत्र बंद करो। रॉयल आत्माएं जो होती है वो दूसरे जो अवगुण को छोड़ते हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे गिरी हुई वस्तु को उठाते नहीं है। तो जो दूसरा छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है उसे तुम नहीं उठाओ,
गुणगान करो,
उसका गुणगान करो, प्रशंसा करो, महिमा करो, हार पहनाओ, तिलक लगाओ, धूप जलाओ। एक मुरली थी नहीं अव्यक्तवाणी सुनने की, उसी से लिया था। तो सदा बाबा कहते सुबह सवेरे सवेरे क्या करो, बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, किस कर्म के साथ कौन सा समान ये जोड़ो, अपनी दिनचर्या स्वयं देखो कैसी है, टाइमिंग क्या है, और किस कर्म के साथ कौन सा समान जोड़ा जा सकता है। जिसकी जैसी दिनचर्या उस अनुसार, ताकि दिनचर्या का एक भी कर्म बिना सम्मान के ना जाए, बिना याद के ना जाए, ऐसा ही व्यर्थ ना चले जाए। हर कर्म अगर शक्तिशाली रहा दिन भर तो दूसरे दिन जो अमृत वेला होगा वो भी शक्तिशाली होगा। अगर कर्मों में सारा दिन व्यर्थ चल रहा है तो अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है, और अमृत वेला अगर शक्तिशाली नहीं तो सारा दिन भर स्थिति कमजोर, स्थिति डाउन, स्थिति नीचे। बाबा ने कभी एक मुरली में कहा है अमृत वेले स्वयं को बाप के प्यार से इतना भर दो कि सारा दिन भर किसी और का प्यार तुम्हें आकर्षित न करे। स्वयं को अमृत वेले बाप के प्यार से इतना भर दो, तो उतना बाप के प्यार से भरने के लिए एकाग्रता भी उतनी चाहिए, उतनी ही दिन भर की स्थिति भी वैसी चाहिए। रात को किस विधि से सो रहे हैं, एक मुरली तो पूरी इस पर चली हुई है, रात को सोने की विधि
कौन सी होगी,
डेट मुझे याद नहीं, पर निखिलेश भाई बताएंगे आपको। एक मुरली पूरी इस पर चली है, रात को अव्यक्त बागदादा, रात में किस तरह सोया जाए। उसमें बाबा ने कहा अगर कुछ बात करना हो तो बाहर जाकर बात करके आओ,
69
मेरा बाबा जो बुक है ना उसके सातवें आठवें पेज पर ही ये साइड
मेरा,
हाँ बड़ी किताब है। तो बाबा ने विधि बताई है, अगर विधि शक्तिशाली है सोने की तो स्वतः ही अमृत वेला शक्तिशाली होगा, नहीं तो अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो हमारी विधि क्या है, हर कर्म की विधि क्या है, हमारी दिनचर्या की विधि क्या है, क्या क्या कर रहे हैं दिन भर। दिन भर में अगर व्यर्थ व्यर्थ है, निगेटिव ही निगेटिव है, परचिंतन ही परचिंतन है, एक दूसरे की ग्लानी ही ग्लानी है, एक दूसरे के साथ झगड़े ही झगड़े है, संकल्पों में टकराव है, स्वभाव में टकराव है, तो अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो सकता। और ब्राह्मण जीवन का तो फाउंडेशन ही है अमृत वेला। केवल उठना और बैठना अमृत वेला नहीं है, अमृत वेला अर्थात शक्तिशाली योग, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली संकल्प। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो। फिर बाबा अमृत वेले, ये 2:30 बजे लिखा है इधर या 12:30 होगा कि 2:30 है, बाबा रुके होंगे तब बजे। नए वर्ष की बधाई देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के अतीत नहीं सदा समीप रहने वाले सर्व बच्चों को नए वर्ष की हर रोज की पदम गुना मुबारक, क्योंकि वर्ष का हर दिन कोई ना कोई नवीनता ले आता है। सभी ब्राह्मण आत्माओं को हर समय कुछ न कुछ नवीनता अपने में और सेवा में अवश्य लानी है। हर दिन स्वयं में नवीनता लानी है, सेवा में बाद में, पहले स्वयं में, पहले संकल्पों में नवीनता, हमारी जो प्लानिंग है उसमें नवीनता। बाबा ने होमवर्क दिया था, आज बाबा आ रहे 31 को होमवर्क दिया है, हाथ उठाने के लिए कहा है, लक्ष्य और लक्ष्य समान है तो हाथ उठाओ। प्लान, प्लानिंग, सोचा, किया स्वयं के लिए आगे बढ़ने का, जिन्होंने संकल्प किया है वो हाथ उठाओ। संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे तो हाथ उठाओ। सदा खुश रहेंगे तो हाथ उठाओ। रात को सोते समय मनसा वाचा कर्मणा, कोई गलती नहीं तो हाथ उठाओ। पास है और पास रहेंगे, पास होकर दिखाएंगे तो हाथ उठाओ। और उस सीजन से, उस मुरली से इस मुरली तक सदा ऐसा रहेंगे, अगर सदा है तो उसके लिए हाथ उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया पर उमंग उत्साह है वो भी उठाओ। भविष्य में भी साथ रहेंगे उसके लिए हाथ उठाओ। कितने सारे हाथ उठवाए बाबा ने, सब कुछ ठीक है तो हाथ उठाओ, नहीं ठीक है तो तो वहां तो हाथ उठाना बहुत आसान है। परंतु जब हम हाथ उठा रहे हैं सोच समझ के, उसी समय श्रेष्ठ संकल्प के साथ हाथ उठाना, तो वहां थोड़ी और शक्ति आ जाएगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपने में नवीनता और सेवा में नवीनता लानी इस वर्ष। तो इस वर्ष यह चेक करना कि हर दिन में स्वउन्नति के प्रति व सेवा के प्रति क्या नवीनता लाई। सदा अपनी श्रेष्ठ स्टेज और पुरुषार्थ की स्पीड को आगे बढ़ाते रहना, स्टेज को आगे बढ़ाते रहना और पुरुषार्थ की स्पीड को। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहे, स्पीड हमारी बढ़ती जाए। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का आगे बढ़ना अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में और बढ़ने की निशानी है। तो सदा हर समय नवीनता की मुबारक लेते रहना और औरों को भी नए उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते रहना। सदा उमंग उत्साह के हर दिन उत्सव मनाते रहना। तो सदैव उत्सव में खुशी में नाचते रहना और बाप के गुणों के गीत गाते रहना। बाप के गुणों के गीत गाते रहना, आज कहा बाप के महिमा के गीत, आलाप के रूप में, साजों के रूप में वतन में गूंज रहे हैं। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते रहना और मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों को भी कभी मुख मीठा कराते रहना। ऐसे नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, कार्ड भेजे, गिफ्ट भेजी है, सबको, हर देश और हर आत्मा को नाम सहित विशेष मुबारक और याद प्यार। अच्छा, तो क्या शब्द कहे यहाँ पर, मधुरता की मिठाई स्वयं खानी है और खिलानी है, दिल खुश मिठाई स्वयं खानी है और दूसरों को खिलानी है, और दूसरा खाने से मना कर दे तो शुभ भावना और शुभ कामना, परंतु आपने आज्ञाकारी बनकर खिलाई तो इसका आपके खाते में जमा हो गया। आपने दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना दी पर उसने नहीं ली तो अशुभ तो दिया, कुछ तो दिया, अशुभ वाइब्रेशन तो दिए, और आप कौन हो, विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तक का काम क्या है, कितना छोटा सा काम है नागेश भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, अशुभ को शुभ में परिवर्तन करते हो। तो मधुर बोल, बोल कैसे, मधुर, शॉर्ट, स्वीट, संयम स्नेह फर्स्ट क्लास फिक्स्ड
फिक्स्ड
था ना एक दो दिन पहले कैसे चाहिए फर्स्ट क्लास और फिक्स सुनने वाले खुश हो जाए सुनने वाले मुबारक दे सुनने वाले दुआएं दे और कैसे हो पूर्णिमा बहन कैसे हो आपके बोल आत्मा सुनकर उड़ने लगे खुश हो जाए और कैसे हो पुण्य आत्मा बनाने वाले वरदानी बोल समान वाले बोल योग युक्त बोल राजयुक्त बोल युक्ति युक्त बोल नपितुले बोल और श्रेष्ठ बोल ममोत्साह सोच समझ कर बोलने वाले तो मधुर बोल मधुर संस्कार मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा करते रहना तो यदि 31st की मुरली 92 की तो आज अव्यक्त दिवस है तो ध्यान रखना है अपनी स्थिति भी सारा दिन भर अव्यक्त रहे नीचे नहीं आना है देह में नहीं आना है देह से ऊपर परे अच्छा ओम शांति